चलिए अब आप गए किसी के घर मेहमान बनने, कभी कभी क्या होता है कि आप अकेले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब आपको बुलाया जाता है तो औरों को भी बुलाया जाता है, तो उस जगह को कहते हैं मजलिस। तो थोड़े से देखते हैं मजलिस के आदाब। मजलिस क्या है? जलसा या जलीसु, जलीस कहते हैं साथी को, यानी जहां सब गैदरिंग कह लीजिए, ठीक है। तो इसकी भी चंद चीजें नोट कर लेते हैं। आप देखिए कि इंसान तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता, शुरू से आखिर तक उसको इंसानों की जरूरत होती है। खुशी गमी ब्याह ये दीन का हिस्सा है। सोशलाइजिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ मैनर्स लिख लीजिएगा। नंबर एक, बुरी मजलिसों में शरीक नहीं होना। खामोशी से बैठा हुआ शख्स भी बुराई में शरीक होगा, अगर वो बुराई से रोकने वाला ना हो तो वहां जाने का कोई जवाज भी नहीं है। तिर्मिजी 2801। फिर इस तरह दूसरी बात, दूसरा अदब, नियत के इखलास के साथ मजलिसों में शामिल हों और अजर का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप इखलास में क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि मसलन उन घर वालों के साथ उनसर मोहब्बत का इजहार करें, किसी अच्छी बात की नसीहत कर दें, घर वालों के कोई मसाइल हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें तो आप उनके मसाइल का हल ढूंढें। फिर इसी तरह वहाँ आप कोई इल्म की बात कर सकते हैं, किसी मसलियत की बात करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर तीसरी बात है कि नेक लोगों की मजलिस में बैठिए, उससे ईमान में इजाफा होगा, आपका भी वक्त नहीं ज़ाया होगा और उनका भी वक्त ज़ाया नहीं होगा। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी को बुरे लोगों की मजलिसों में बैठकर ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि इंसान पर उसके दोस्त के असरात होते हैं। अलमरु अला दीनी खलीली ही, बुखारी की रिवायत 5534 और मुस्लिम 6692, यानी इंसान पर उसकी दोस्तियों का असर होता है। कितने अच्छे ही लोग बुरे लोगों की सोहबत में बैठे और बुरे बन गए, और इसका अपोजिट भी है। फिर इसके बाद अगली बात है कि दुश्मनों की मजलिस में शिरकत से इज्तनाब करना चाहिए। अब दुश्मनी दीन की है या दुनियावी है, कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो बुरी लगती हैं। इंसान बैक बाइटिंग कर सकता है, तानो तशनी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह रास्तों में मजलिस नहीं लगानी चाहिए, इससे कई गुना होते हैं। राह जातों पर नज़र पड़ती है, रुकावट हो जाती है, फितने बनते हैं। बुखारी की रिवायत है 2465 और मुस्लिम 5563। फिर इस तरह हलकों और टोलियों में बैठने से गुरेज करना चाहिए, बुखारी 6-6, मुस्लिम 5-6-8। फिर इस तरह मजलिस में आने वाला सलाम कहे, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अबू दाऊद 5208। और इसी तरह वही बात जो पीछे पढ़ चुके हैं कि बार बार आने पर दोबारा भी सलाम हो सकता है। आप बैठे थे कुछ और लोग आगे गैदरिंग में, तो वुस्सत पैदा कीजिए। सूरत मुजादिला आयत 11, तफस्सहू, वुस्सत पैदा करो अपनी मजलिसों में, और मुस्लिम 5683। फिर मजलिस में आने वाले को जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, शरह सुन्ना 3328 इमाम बख़वी की किताब है। जगह ना मिले तो सबसे पीछे बैठ जाए। लोग एक हलका बनाकर बैठे, आप उसके बीच में नहीं जाकर बैठ सकते, तकलीफ होगी लोगों को। अबू दाऊद 4826। दो लोग बैठे हैं, आप उनके बीच में जाकर नहीं बैठेंगे उनकी इजाज़त के बगैर, अबू दाऊद 4845। एक जगह उठकर किसी वजह से गया तो वापस आने पर वो ही उस जगह का मुस्तहक है, आप उसकी जगह पे नहीं बैठे। बस खाना लेने जाते हैं लोग उनकी चेयर ले जाते हैं, इसीलिए लोग उठते ही नहीं, या तो कुर्सी साथ ले लेके फिरते हैं या दूसरे को कहते हैं मुझे खाना डाल दो। तो ये मुस्लिम की रिवायत है 5686। फिर वक़ार और सुकून के साथ बैठिए, किसी को दुख पहुंचाने से बचें, मोहब्बत दीजिए, गीबतें और चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए मजलिसों में, मुस्लिम की रिवायत 162। फिर मजलिस में ज़्यादा हरकत नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, कुछ लोग आते हैं थरथली बढ़ जाती है, ना बैठते हैं ना बैठने देते हैं, बेचैन है, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो स्टिल कीप काम। फिर इसी तरह बात करने की जरूरत हो तो दुरुस्त बातें करें, बहुत चढ़ 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 नहीं बोलना चाहिए और मजाक उड़ाने से बचना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। फिर इस तरह मजलिसों में बैठकर अपने खानदान, औलाद, कारोबार, घर की बातों पे फख्र नहीं करना चाहिए, यानी फख्रिया बातें नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह मजलिस में बैठे हैं, अपनी अंगूठियों से खेल रहे हैं, अपने फ़ोन से खेल रहे हैं, बैठ के दांतों में खिलाल शुरू हो गए, थूकने लग गए, छींकने लग गए, अंगड़ाइयाँ लेने लगे, नाक में उंगलियाँ डालने लगे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो ये सारी चीज़ों से बचना है। और उंगलियों को चटखाना, बाज़ लोग बैठ के उंगलियाँ चटखाते हैं, और बाज़ लोग बॉडी लैंग्वेज बड़ी इस्तेमाल करते हैं, हिलते जुलते हैं, अपने दोस्तों से पूछिए आप कैसे हैं, आप बताएं तो फिर नाराज भी ना हो। और अक्सर लोग इतने चुलबुले होते हैं, मैं कहती हूँ इनको आज तक कोई दोस्त ना मिला, किसी ने इनको इनके दुख सुख नहीं बताए, लेकिन बहरहाल इससे बचना चाहिए। फिर अगर कोई बात कर रहा है तो उकताहट का इजहार ना करें, सुन ले, 10 दफा भी सुनी हुई है तो 11वीं दफा फिर सुन ले। बार बार खुद नहीं किसी को अपनी बातें सुनाएं, गुफ्तगू ना काटें, कोई बोल रहा है तो बीच में आप ना बोलिए, और मजलिस में ऐसा लिबास पहनकर नहीं जाना जिससे सतर खुलें। मुस्लिम 5499। आधा धूप में और आधा छाँव में नहीं बैठना चाहिए, अबू दाऊद 4821। फिर मजलिस में सरगोशी करना हराम है, क्या कहते हैं इसको, इन्नमन नजवा, नजवा। बुखारी की रिवायत है 6290 और मुस्लिम 5696। फिर इसी तरह बाएं हाथ पर टेक लगाकर नहीं बैठना चाहिए, जैसे ये देखे मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो मैं यूं लेके बैठ जाऊं, नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा अंदाज नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है 4848। फिर ऐसी मजलिसों से दूर रहना चाहिए जिनकी वजह से अल्लाह का गजब हो, मसलन गीबतें, चुगलियाँ, बेहयाई की बातें, घरों के राज अफशा हो रहे हैं और तोहमतें और बहताने लगाए जा रहे हैं, ये शर की मजलिसें, इनसे दूर रहिए। करें क्या फिर, मजलिसों में अल्लाह का जिक्र और नबी सल्लम पर दुरूद भेजिए, अबू दाऊद की रिवायत 4855। फिर कसरत से हंसने से गुरेज कीजिए, ऐसी मजलिसों में कोई खैर नहीं होती, ये दिलों को सख्त कर देती हैं, इब्ने माजा 4193। कसरत से इस्तगफार कीजिए, मुस्लिम 6856। फिर मजलिस से उठते हुए सलाम कीजिए, अबू दाऊद 5208। फिर इसी तरह बैठने वाले सबको सलाम कीजिए, अगरचे कोई एक आपके साथ बात कर रहा है दूसरा नहीं, इकट्ठे इज्तमाई सलाम कीजिए, बुखारी 6254। लड़ाई झगड़ों से बचें, कई मजलसें एंड पे कहाँ पे ख़त्म होती हैं, लड़ाई पे, फिर कहते चलो अपने अपने बच्चे पकड़ो घर जाते हैं, हैं। और सबसे अच्छी बात कि मजलिस से उठते हुए गुनाहों के कफारे की दुआ पढ़नी चाहिए, किसको आती है दुआ, तिरमिजी की रिवायत है 3433। क्या पढ़ते हैं मजलिस से उठते हुए, आपने इस नोट्स में जगह छोड़ें, सर्च करके लाएं। अच्छा, मोस्टली जो मजलिसें होती हैं वो किन की होती हैं, कौन होते हैं हमारे सामने दोस्त, तो चंद आदाब दोस्ती के बताऊं आपको कि दोस्ती में आदाब होने ही नहीं चाहिए। दोस्त कहते हैं लो, दोस्तों की महफिल में भी अब अदब आदाब, बहुत अमेरिकनाइज हो गए हैं आप लोग, अमूमन ये सोचते हैं ना। तो चंद चीज़ें दोस्ती की, हम में से हर एक दोस्ती बनाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन दोस्त होता है, उससे दोस्ती की जाती है, और उस शख्स में कोई खैर नहीं कि जो ना किसी से मानूस होता है और ना कोई उससे मानूस होता है। अल मुस्लिमु यालिफु वल मौलफ, उल्फत से है, ये मुसनद अहमद की रिवायत है। करें क्या, सच्ची दोस्ती का मेयार, बहुत अहम सवाल है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है आपके मेरे लिए, क्योंकि आज बहुत सारों के दीन से दूर होने की वजह दोस्तियाँ, और कितने ही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन के करीब आने की वजह दोस्त। आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफ़ा अपनी किसी दोस्त की दावत पे कुरान के करीब आए, क्लासेस के करीब आए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी। और आपकी वो दोस्तें क्या सौतेली हैं जिनको आपने दावत नहीं दी, अपनी दोस्तों से ये पूछिएगा कि आखिर हमारे इखलास में क्या कमी है कि आप हमारे कहने पर इस दावत को कबूल नहीं करते, और आप ये सोचे बैठे हैं कि वो करेंगे नहीं, वो आएंगे नहीं, उनको तो ज़रूरत नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात है कि मोमिन के लिए दोस्ती का मेयार क्या है, इसके काफ़ी सब टॉपिक्स छोटे छोटे आएंगे। पहली बात है कि सच्चे ईमान की अलामत है कि ईमान वाला इससे दोस्ती रखता है जो अल्लाह को पसंद हो, और इससे दुश्मनी और बुगज रखता है जो अल्लाह को ना पसंद हो। अबू दाऊद 4681। हम पीछे 2-3 बार यह हदीस नोट कर चुके हैं कि अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्जु फिल्ला। फिर इसी तरह एक बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा तुम्हें किसी की दोस्ती की जरूरत पेश आए तो उससे दोस्ती इख्तियार करो कि जब तुम इसकी खिदमत करो तो वो तुम्हारा मुहाफिज हो, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए जीनत हो, कोई मुश्किल पेश आए तो वो तुम्हारा बोझ हल्का कर दे। यानी दोस्त के करने के कामों में ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, तुम नेकी की तरफ हाथ बढ़ाओ तो वो भी बढ़ाए, तुम्हारी अच्छाई देखे तो इस उसको कबूल करे, बुराई देखे तो उस तुम्हें उससे रोके, कोई मुसीबत नाजिल हो जाए तो हमदर्दी करे, जब तुम कहो तो तुम्हारी तस्दीक करे, किसी काम का इरादा करो तो तुम्हें अपना अमीर समझे, और बात में झगड़ा हो जाए तो वो तुम्हें अपना समझे। यकीन करें 3-4 जुमले हैं लेकिन इसमें बेहतरीन दोस्ती का मेयार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अर्श के गिर्द नूर के मिंबर हैं और इन पर नूरानी लिबास और नूरानी चेहरों वाले लोग होंगे। वो अम्बिया और शोहदा तो नहीं, मगर अम्बिया और शोहदा उन पर रश करेंगे। साहबा ने कहा कि हमें बताइए ये कौन लोग होंगे। आपने फरमाया अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के पास बैठने वाले और अल्लाह के लिए ही एक दूसरे से मुलाकात करने वाले। ये निसाई की रिवायत है। क्या पता चला, नेक लोगों को दोस्त बनाए। याद रखिए कि ग़ालिबन मेरे लिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल है, कहते हैं कि बुरों की दोस्ती से बचो, क्यों? ये तुम्हें नेक लोगों से बदगुमान कर देंगे। और आज देखिए, बेतकल्लुफ दोस्तों की मजलिस में जो मौलवियों के नाम के लतीफ़े बनते हैं वो किसको नहीं पता। तो बुरे लोग आपको अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। फिर इसी तरह वो हदीस जो अभी सुनाई है खुलासे में, कि एक शख्स गुजरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स एक भाई से मिलने एक दूसरे गांव गया। रास्ते में अल्लाह ने फरिश्ते को इंतज़ार के लिए भेज दिया। फरिश्ता कहा, किधर जा रहे हो? कहा, मेरा इधर एक भाई है या दोस्त है। कहा, क्या उसका कोई एहसान है जिसका तुम बदला देना चाहते हो? उसने कहा कि नहीं, कोई एहसान नहीं था। कहा, मैं तो सिर्फ उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो फरिश्ते का जवाब लिख लीजिए जो मैंने पहले नहीं बोला। कहा, तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया हूँ, अल्लाह भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह तुम अपने इस देहाती दोस्त से मोहब्बत करते हो। ये सही मुस्लिम की रिवायत 6549 है। शरायत क्या हैं? तीन शर्तें लिख लीजिए। इस्लाम में दोस्ती की शरायत, नंबर एक, खालिस अल्लाह के लिए दोस्ती कीजिए। ओहिब्बु की फिल्ला कहते हैं ना, तो फिर दोस्ती भी अल्लाह के लिए। नंबर दो, दुनियावी कोई गरज का दखल ना हो और दोस्ती का बायस ईमान और सलाम हो। कौन लोग हैं दोस्ती के काबिल? नंबर एक, जिनसे दोस्ती अल्लाह की खातिर हो, वो शख्स जो अल्लाह को बहुत पसंद हो, अक्लमंद शख्स हो। बेवकूफ़ की दोस्ती नुकसान पहुंचाती है। वो नाक पे ईंट मारने वाला वाक्या तो आपने सुना ही होगा। एक शख्स अपने दोस्त के साथ था, सोने लगा, कहा चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जब उठा तो नाक पे से खून बह रहा था। कहा, क्या हुआ? कहा, तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठ गई थी, उसको मार रहा था। तो ऐसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है, ऐसे दोस्त ना बने। फिर इसी तरह एक और मेयार है दोस्ती का, मुत्तकी हो। फासिक अल्लाह से नहीं डरता तो दोस्ती का लिहाज कैसे रखेगा? फिर पांचवी खूबी दोस्त में होनी चाहिए अच्छा अखलाक। बद अखलाक शख्स आपको अपने ज़ाती मुफाद के लिए, याद रखिए, इस्तेमाल करेगा और गुस्से में आ जाएगा। फिर छठी बात क्या है कि दोस्त अल्लाह की किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला हो। और सातवीं बात, बिदात से इज्तनाब करने वाला हो। आदाब नोट कर लीजिए क्विकली दोस्ती के। नंबर एक, एक दूसरे के मददगार बनिए। ज़ाती मामलात के बारे में जैसे आप अपने लिए पसंद करते हैं, दोस्त के मामलात पर भी वैसे ही नज़र रखिए। ज़ुबान का इस्तेमाल दोस्त के लिए वैसे ही कीजिए जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं बेतकल्लफ़ी में आपको कोई मोटी कह दे तो आप भी उसको मोटी कह दें, आप छोटी कह दें तो वो भी कह दे। कभी बेतकल्लफ़ी में भी बहुत ऐसी बात ना बोलें जिससे अगले का दिल टूटे। फिर खुशी और गम के मौके पर इत्तला दीजिए अपने दोस्तों को। दोस्त बीमार हैं तो उनकी बीमार पुरसी कीजिए। कोई उनके घर पे काम आ पड़ा तो उनका तावन कीजिए, लेकिन शर्त है तावनु अलल बिर्री व तकवा। ऐसे गुनाह के कामों में नहीं शामिल होना कि जो सारा वबाल बाद में आप पे भी पड़े। फिर इस तरह दोस्तों के साथ गुफ्तगू में झगड़े का अंदाज नहीं होना चाहिए, जो कि अमूमन होता है। और बाद में क्या कहते हैं, बेतकल्लुफी बहुत है। फिर दोस्त की छुपी हुई बातों की टोह ना रखिए। दोस्त कोई राज कर ही दे आपके साथ शेयर तो उसको ओपन ना कीजिए। दोस्त की गलतियों को छुपाइए। इमाम शाफी के नज़दीक ये खैर ख्वाही और जीनत का बायस है। और जो लोगों के सामने नसीहत करे वो अपने दोस्त को रुसवा करता है। दोस्त को उसकी बातें तन्हाई में बताइए। फिर इसी तरह हुस्ने सन रखिए अपने दोस्तों से। कतई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। अगर वो गुनाह कर रहे ना तो तौबा का इंतज़ार कीजिए और वाज़ और नसीहत कीजिए। फिर इसी तरह दोस्ती में वफा और साबित कदमी ज़रूरी है, यानी बेवफाई ना कीजिए, दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर दोस्त फौत हो जाए तो उसकी औलाद और उसके घर वालों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए, दोस्त के दुश्मन से ताल्लुक़ नहीं बनाने चाहिए। अरब लोग कहते हैं कि तीन लोग आपके दुश्मन हैं, एक आपका दुश्मन, एक आपके दोस्त का दुश्मन, और तीसरा आपके दुश्मन का दोस्त। तो दोस्ती में ये ख्याल रखना चाहिए। फिर दोस्त के मिलने पर उसको खुशामदेद कहिए। अपने घर वालों से ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए दोस्तियों को, ये भी एक पॉइंट है छोटा सा। बस दफा हम कुछ लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, फिर अपने घर वालों को भूल जाते हैं। वक्त बे वक्त दोस्तों के घर जाना, हर वक्त ही उनकी मदद करने के गुमान में, अब अपने मर्द बेचारे शौहर को खाम खा में आप एक मजबूर कर दें कि किसी वक्त पे वो गुस्सा ही करे। हद में रहिए। देखिए, बहुत सारे लोग दोस्तियां करते हैं लेकिन उसकी हदों को नहीं निभा पाते। तो हर चीज़ अपनी वक्त पे अपनी जगह पे अच्छी लगती है। मुशक्कत में नहीं डालना चाहिए दोस्तों को, क्योंकि मुरव्वत में आकर वो नो नहीं कहेंगे लेकिन दिल से नहीं करेंगे। फिर तकल्लुफ नहीं होना चाहिए दोस्ती में। उन्स और अपनाइत होनी चाहिए, अजनबियत दूर हो। अगर मर्द हैं तो दोस्त हैं तो इकट्ठे नमाज पढ़ने जाएं, और अगर औरतें हैं दोस्तों में आप तो मिलकर नमाज का अहतमाम कर लीजिए, ताकि जिसने नहीं पढ़नी थी वो भी पढ़ ले। और इसी तरह अपने दोस्तों और उनकी औलाद के हक में दुआ खैर कीजिए, और दोस्तों का तذکرہ हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में अदा कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हकीकत में अपने दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, उनके दोस्त सोच भी नहीं सकते कि वो बाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है तोहफा देना, क्योंकि ये सारा एक ही सीक्वेंस चल रहा है ना। आप दोस्तों को तोहफे देने हैं, या तोहफे के बारे में इस्लाम क्या कहता है? तो तहादू तहाबू अल अदबुल मुफरत 594, ये भी इमाम बुखारी ही की किताब है। ये सही बुखारी नहीं है बल्कि दूसरी बुक है, लेकिन सही रिवायत है अबू हुरैरा से। तहादू तहाबू, तोहफा दो तो मोहब्बत बढ़ती है। तो मुसलमानों के दरमियान में उल्फत और मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ तोहफों का लेन देन है। ताल्लुकात फीके हो जाते हैं इसके बगैर। नए ताल्लुकात हों तो बन ही नहीं पाते बाज़ दफ़ा। करें क्या? नंबर एक, फिर वही क्वेश्चन, क्यों दूं? अल्लाह की रजा के लिए तोहफों का लेन देन कीजिए। अल अदबुल मुफरत 595। हम अमूमन क्या कहते हैं? रस्म व रिवाज, दिस एंड दैट। दूसरी बात है, तोहफा देने का आगाज कर रहे हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारों को, फिर करीबी हमसायों को दीजिए। फिर मुश्तबे और हराम चीज़ों का हदिया नहीं देना चाहिए। तोहफे को हकीर नहीं समझना चाहिए। बुखारी 2566, मुस्लिम 2379। फिर तोहफा रद्द नहीं करना चाहिए। अल अदबुल मुफरत 157। हदीये का बदला भी देना चाहिए। बुखारी 2585। लेकिन बदले के लिए नहीं देना चाहिए कि मैं किसी को दूं ताकि वो भी मुझे फिर उससे बढ़कर दे। इसी तरह सरकारी ओहदों पे फाइज हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के इवज या वहां के क्लाइंट्स, उनसे हदीये नहीं लेने चाहिए। बुखारी का हवाला लिख लीजिए 6979। बाज़ दफ़ा फिर वो तोहफे रिश्वत बन जाते हैं ना, उसके बदले में कुछ वो फिर आपसे लेंगे। फिर मुनासिब तोहफा दीजिए, ये नहीं कि जो तोहफे में चीज़ जाए हो तो अच्छी लेकिन जिसको आप दे रहे हैं उसके काम की ना हो। और तोहफा देकर एहसान नहीं जतलाना चाहिए। सूरत अल बकरा 264। और आप देखिए कि तोहफे और रस्म का फ़र्क समझ आ गया आपको? पीछे जिधर उम्मीद लग जाए दुल्हन के घर वालों की तरफ से, लड़के की माँ को 5 तोले के कंगन मिलेंगे, ये तोहफा के रस्म, बल्कि ये इससे भी ज्यादा संगीन जुर्म है। फिर वो कहते हैं अच्छा चलो फिर हम लड़के की भी माँ को दे देते हैं। तहादू तहाबू, तो स्टेज पे खड़े होके 500 लोगों के बीच में देने की क्या जरूरत है? जब मर्जी दें, जिधर मौका बन जाए कि इस मौके पे देना। कई लोग देखिए दुल्हन की माँ को या दूल्हे की माँ को वहां जाकर लिफाफे दे रहे होते हैं पैसों की सूरत में, और वो भी पहले पकड़ते साथ, कहते क्या जरूरत है, साथ ही अंदर रख रहे होते हैं बैग में के टटोलेंगे कि कितने ज्यादा नोट हैं, तो भाई क्या जरूरत थी, तो दे दें वापस। कई लोग हमारे यहाँ देखे तो क्या जरूरत थी इसके लाने की, ये अच्छा तोहफा है, तो मैं तो कहूंगी दे दें वापस, फिर मैंने गलत काम किया मुझे माफ कर दें। ये तकल्लुफाना जुमले होते हैं। आप मुझे बताइए, अक्ल में ये बात आती है? पहले होते थे घरों में शादियां, चलो भाई घर में आप गए शादी का तोहफा ले गए, ठीक है। आप शादी हाल में वो भी हैं और आप भी, और वो आपसे भी ज्यादा कॉन्शियस है अपने पहनने ओढ़ने पे, और आप वहां तोहफे दे रहे हैं घूमते। कई दुल्हनों की माओ के पर्स फिचोरी होते हैं, मासी ले जाती हैं, अब वो बेचारी वहां आपके वो तोहफों के डब्बे उठाएं क्या करें। उसका भी हमने एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा शाइस्ता किस्म का हाल लिखा, नो बॉक्सेस प्लीज, तो बॉक्सेस के बगैर तोहफे ले जाइए, डब्बे ना डालें उसमें खाली तोहफा। आप क्यों जल्दी समझ जाते हैं लोगों की बातें हैं? जैसे लोगों ने कहा तोहफा लेना जरूर है, हम हल निकाल लेंगे। देखिए ना, अब आप अगर अक्ल से सोचें, क्या ये सारे तोहफे आज इस्तेमाल हो जाने, कई दिन तक वो खुलते भी नहीं होंगे, और वो पर्स और वो जो पैसे हैं वो यूज होते हैं, पहले दे दीजिए, बाद में जाके दे दें, क्या होगा? नहीं, शर्म आती खाली आ जाते हुए। कई लोगों को मैं देखा, सिर्फ इसलिए नहीं जाते किसी दावत में या शादी में कि कुछ लेके जाना पड़ेगा, नहीं जाते। क्या करें फिर, वो हर जुमे को जो शादी है तो हर जगह वो कैसे इतने पैसे दें और इतने तोहफे दें? इस चीज को खत्म करें, बड़ी जुरत की बात है। किसी एक ने कहा हज पे गाना था, इतने लोग गाते हैं, क्या करें फिर देना पड़ता है। मैंने कहा इसका एक हल है, आप इस दफा हज करके आ रही हैं, आप किसी को कुछ भी ना दें, तो अगली दफा आप हज पे जाएंगी कम से कम आपको तो कोई कुछ नहीं देगा। कितना बेतुक्कापन है, कोई कहीं जा रहा है तो तोहफा, कोई आ रहा है तो तोहफा। और आप देखिए कि ये मोहब्बत बढ़ाने से ज्यादा फिर बिगाड़ का भी जरिया बन गया। और हमारे यहाँ तोहफे के लिए क्या कहते हैं, ये लेने देने के काम आएगा, जो बेकार चीज़ होती है कहते रख दो, ये किसी के काम आ जाएगी ना फिर बाद में। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे बचने की जरूरत है। उसको दें, देखिए मैं तो एक रुपए की भी चीज उसको नहीं दूंगी जिसको मेरा दिल नहीं करेगा। लेके भी गए तो वापस लेंगे, और किसी को दिल आए तो आप अपनी भी चीज उतार के दे दें। तोहफे में हुब है, मोहब्बत है। तो बहरहाल से ज्यादा मैं नहीं कुछ कहती, तो एनिवर्सरी पे तोहफा ना मिले तो मियाँ से नाराजगी। आप देखिए कि मोहब्बत को इजहार की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत खुद ही जाहिर होती है। अच्छा, उस्तादों को तोहफे देने चाहिए, औजुबिल्ला GPS को तोहफे देने चाहिए, अंसारुल्ला को तोहफे देने चाहिए, क्या तोहफा देना चाहिए? दुआएं दें। देखिए कुछ चीजें जो ना वो रस्में बन जाती हैं। कोई अंदर आए फूलों की बकेट, मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है, मैंने कहा क्या, कहती है अब लोगों ने आपको फूलों के बकेट देना छोड़ दिए हैं, मतलब आपस में बातें शुरू हो गई सोसाइटी में। मैं क्यों, कहती उनको पता है आपने पकड़ के कहना इसको अलबरका में दे दो, ऑक्शन कर दो, तो लोग सोचते हैं कि नहीं फिर आपके पास तो रहता नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं कामयाब हूँ। अब देखिए $20 का तो आता ही होगा ना एक फूलों का, ऐसी है ना, $20 पाकिस्तान के आज भी मेरा ख्याल है 2,500 रुपये बनते हैं, 2,500 रुपये बनेंगे ना, 2,500 रुपये में आज भी आपको पता है कि मेरा गुमान है कि 2,500 में 100 इंटे आ जाएंगी, ये मेरा गुमान है, मैं डबल चेक करवाती हूँ। वो 100 इंटे आप किसी जगह जाके लगा दें, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, तो दीवार बन जाएगी ना। बस दफा हमारे ये तकल्लुफात बढ़ जाते हैं इतने, जिसकी वजह से फिर हमारी पूरी नहीं बढ़ती। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा, अब जिसको जो मर्जी दें लेकिन कीमती। फिर ये पूछना, अच्छा ये दुल्हन का तोहफा भी पूछना चाहिए, मियाँ ने क्या दिया? बेचारे मुंह दिखाई में देने के लिए, सिर्फ ये कि दूसरों को मुंह क्या दिखाएंगे, एक तो वो मुंह देखते हैं, एक दूसरा भी इशू है कि मुंह में क्या। देखिए ये फिर ना बातें होती, एक बहन को डायमंड का मिल गया, दूसरा बेचारा डायमंड का सेट नहीं दे सका, उसने सिर्फ सोने की अंगूठी दी, तो कहेंगे तुम्हारे मियाँ को तो तुमसे प्यार ही नहीं है। और वो सास क्या लाएंगी, बरी में तोहफे आते हैं, तुम्हारी तो कदर ही नहीं, तुम्हारी सास तो सारी तुम्हारी वो कहना चाहिए कि शॉपिंग जब वो सदर बाजार से करके आ गई, ये देखो मेरी सास किस बुटीक से लेकर आई है। ये शादियों के जोड़े तोहफों की सूरत में जेवरात, याद रखिये ये है वो तुमार ऐसरा हूँ बलगलाल अल्लाह थी जिसमें आज उम्मत खोई हुई है। जो आपके दोस्त है ना वो अल्लाह की किताब और सुन्नत को मानने वाले हों। देखिए हम सब आइडियल माहौल में नहीं रह रहे, देखिए कि अगर किसी जगह इल्म ही नहीं आम तो फिर ये तो होगा, तो अब सबको छोड़ दें। बात लोग कहते हैं मैंने कोर्स ज्वाइन किया फिर मैंने अपनी सारी दोस्तों को छोड़ दिया, यानी कोई कि तलाक दे रही कि अब आपका मेरा खत्म, नहीं आप उन तक पहुंचेंगे। एक बात याद रखिए कि सच में बड़ी कशिश है, हक हक होता है जब आप उसको मानने वाले बनते हैं। जजमेंटल ना बने, बहुत बातें ना करें, आप उनसे मोहब्बत से रहें, यकीन करें उनको तोहफे दें। $1 का अगर आप एक चॉकलेट या अगर उनकी पसंद का कोई खाना लेकर हर महीने में उनके घर देती रहना तो वो उनको लेकर आएगा, लेकिन यह कि ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं खींच लेनी चाहिए, ठीक है।